ओम शांति। वर्तमान समय के इस कलुषित वातावरण में जीवन को सरल और सौहार्दपूर्ण तरीके से जीने के लिए परमपिता परमात्मा ने इस धरा पर एक बगिया बनाई और ईश्वरीय सुगंध फैलाने के लिए नाना प्रकार के पुष्प निर्धारित किए। उन्हीं पुष्पों में से एक पुष्प रत्न आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी हमारे समक्ष हैं। हम सभी आपका अभिनंदन करते हैं और करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। आपको बाल्यकाल से ही बाप दादा ने अपने स्नेह की पालना दी। आप विगत 38 वर्षों से समर्पित रूप से ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में आप दिल्ली लॉरेंस रोड एवं उनसे संबंधित सेवा केंद्रों की निमित्त हैं एवं मेडिकल विंग की एक्टिव मेंबर, एडमिनिस्ट्रेशन विंग की सेवाओं में भी पूर्ण सहयोग देते हैं। आपके अनुभवी बोल से आज हम सभी लाभान्वित होंगे। आज का विषय है लास्ट सो फास्ट जाने की विधि। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति। गुड लेट इवनिंग बोलो सभी। हाँ, इवनिंग हो गई अभी। गुड लेट इवनिंग। आज का दिन बसंत पंचमी का दिन है। आज ही है बसंत पंचमी। हाँ जी, तो बसंत पंचमी के दिन विशेष भारतवर्ष के बहुत सारे प्रांत सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। तो आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है। यूं तो हम शिव बाबा ज्ञान के सागर के बच्चे हैं, ब्रह्मा जो कि सारे वेदों शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उनकी हम संतान हैं, और माँ सरस्वती की विशेष पालना लिए हुए विशेष बच्चे हैं। तो हम सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं और आज हम इस मामा बाबा के रचे हुए यज्ञ में कहें, इंस्टीट्यूशन में कहें, यूनिवर्सिटी में कहें, आज हम यहाँ पर बैठे हैं। और आज का विषय दीदी ने बताया, लास्ट सो फास्ट जाने की विधि। बाबा ने यज्ञ रचा, इस यज्ञ को आज 84 वर्ष हो गए और हम आत्माएं कोई एक वर्ष, कोई दो वर्ष, कोई पांच वर्ष, कोई 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, कोई कोई चल रही। और जो नए नए आते हैं उनको कभी कभी ये संकल्प चलता है कि दादियों ने इतना पुरुषार्थ कर लिया, इतने वर्ष वालों ने इतना पुरुषार्थ कर लिया, हम तो अभी आए हैं और हमारा पुरुषार्थ तो अभी बहुत कम है, कभी ऐसा संकल्प आ जाता है। लेकिन बाबा ने हम सभी को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि हम भले लास्ट में आए हैं तो भी हम लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट भी आ सकते हैं। कौन कौन चाहते हैं हम लास्ट सो फास्ट? हाँ, हाथ खड़ा करो। हाँ, सभी चाहते हैं। बहुत अच्छा। तो हम सभी बहुत विशेष अपने पुरुषार्थ के स्नेही हैं कि जो हम चाहते हैं कि हम अपना पुरुषार्थ फास्ट गति से करें, तो उसके लिए आज हम कुछ बातों के ऊपर विचार करेंगे। एक बारी हमने भी मनोहर दादी जी से पूछा, दादी हमारा पुरुषार्थ तीव्र कैसे हो जाए, कुछ सिंपल टेक्निक्स बताओ। तो मुझे वो सीन, वो सब बातें याद आ रही थी आज, कि दादी ने कहा कि सबसे पहली बात, अपनी दिनचर्या को एक्यूरेट कर लो। फास्ट पुरुषार्थ के लिए, तीव्र पुरुषार्थ के लिए अपनी दिनचर्या हम चेक करें। और दिनचर्या अमृत वेले से नहीं, पिछले दिन की जो हमारी स्थिति है या पिछली शाम से रात से हमारे जो संकल्प चल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी कहीं जाना आना होता है, लेट सोना होता है, किसी कारण से नींद कम आती है या देरी से आती है, तो एक थॉट चलता है, आज तो थके हुए हैं, पता नहीं सुबह अमृत वेला ठीक से होगा या नहीं होगा, आज बहुत थकान है, या रात को नींद नहीं आई है। तो ये गुलजार दादी कहती थी कि ये जो विचार हैं रात को सोने से पहले, ये सारे विचार देह अभिमान के हैं, देह के भान के हैं, जो हमें, भले हमें अच्छी नींद भी आ जाएगी तो भी सुबह हमें पावरफुल अमृत वेला करने नहीं देगी। क्या मन में आएगा, नहीं रात को नींद ठीक नहीं की ना, रात को देरी से सोए थे ना, तो वो भले हमारी नींद भी कंप्लीट हो गई हो तो भी हमारा अमृत वेला पावरफुल करने नहीं देंगे ये थॉट्स। तो इसीलिए रात्रि सोने से पहले बाबा कहते हैं कुछ देर बाबा को याद करो, और बॉडी कॉन्शियसनेस के जो थॉट्स हैं उनको अलग करो, फिर आप बाबा की याद में, बाबा की गोद में सिर रख करके आराम से सो, और सुबह के लिए जितने बजे आप संकल्प करेंगे, चाहे आप 3 बजे का करेंगे, 3:30 बजे का करेंगे या 4 बजे का करेंगे, जैसा आप संकल्प करेंगे उतने बजे ही बाबा आपकी नींद खोलता है या नहीं खोलता है? खोलता है हा? तो संकल्प हम पावरफुल रात को करें, तो सुबह और थोड़ी सी स्थिति भी बना करके रेस्ट करें, सोएं, और अगले दिन का अमृत वेला हमारा बहुत अच्छा होगा, एक्यूरेट होगा, कभी भी झुटका पुटका नहीं आएगा, और बाबा के प्यार में अशरीरीपन का, बहुत सुंदर अभ्यास करने का वो समय है। बाबा से कोई भी बात आपको मनवानी है, कहनी है, कहलवानी है, वो सारे काम बाबा उस समय बहुत अच्छी तरह से हमारे काम करता है। तो इसीलिए अमृत वेला हमारा बहुत बहुत स्नेह पूर्वक हो। कई बारी हम अमृत वेला उठ तो जाते हैं, लेकिन कैसा अमृत वेला हुआ? झुटके पुटके वाला। इसीलिए पिछली रात को हमने डाइट कैसी ली, पहले हम इस पे भी थोड़ा अटेंशन दें कि रात का खाना हम थोड़ा हल्का खाएं, ताकि सुबह सुस्ती का मेरे अंदर कोई संकल्प ना हो, कोई प्रभाव ना हो। तो जिससे मेरा अमृत वेला जितना अच्छा होगा, उतना मेरा पुरुषार्थ सारे दिन का बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अमृत वेला, इसलिए कहते हैं वेल बिगिन इज हाफ डन। तो अगर हमारा अच्छा हो गया अमृत वेला, तो सारे दिन की दिनचर्या बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात, जैसे कल भी सुन रहे थे कि हमारी मुरली के टाइम भी दो क्लासेस होती हैं, और जनरली हम देखते हैं कि मुरली से पहले के योग में बहुत कम लोग पहुंचते हैं। कोई 5 मिनट पहले दौड़ लगा करके पहुंच रहे होते हैं, कोई ट्रैफिक कंट्रोल, या कोई 15 मिनट बीत जाने के बाद, कोई तो आधी मुरली पे ही पहुंचते हैं। तो ये भी हमें रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी कि मेरा मुरली क्लास से पहले कम से कम भी 15 मिनट का योग अवश्य होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो 15 मिनट का योग कम से कम, अगर उससे ज्यादा है, 1 घंटे का है, आधे घंटे का, तो बहुत अच्छा है। हम अपने पुरुषार्थ को फास्ट करना चाहते हैं, तो अमृत वेला करके हम अगर रेस्ट ना करें दोबारा से, तो ये भी हम अपने पुरुषार्थ को फास्ट कर सकते हैं। क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है, हमारे अपने वश में है। कई लोग तो अमृत वेला करके और जा करके ऐसे रेस्ट करते हैं जैसे पता नहीं कितना काम करके आए हैं, लेकिन अमृत वेला बाबा कहते बैटरी पूरी चार्ज होती है। उस समय अगर आप कोई अच्छी बात लिखते हैं या पढ़ते हैं, मुरली पढ़ते हैं या कुछ भी ऐसा लिखते हैं, तो उस समय उस चीज में बाबा विशेष कला भरता है, विशेष कला भरता है, क्योंकि उस समय आपकी बैटरी चार्ज है। तो उस समय को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, और वो जब समय यूटिलाइज होता है तो हम क्लास में भी टाइम पे पहुंच सकते हैं। अन्यथा लेट आने का ये एक कारण हो जाता है कि जब हम योग करके रेस्ट करते हैं और फिर दोबारा उठते हैं, तो उसमें टाइम चला जाता है काफी। तो इसके लिए हम अपनी ये दिनचर्या में सेट करें कि मुझे वो समय को किस तरह से अच्छी तरह से अपने प्रति यूज करना है। मुरली में भी, मुरली कितनी लगन से हम सुनते हैं। कभी कभी कोई कोई मुरली सुनने के लिए एक्यूरेट टाइम पे तो आ जाते हैं, लेकिन मुरली सुनते हुए आंखें बंद हो रही हैं। तो जब हम मुरली सुनते हैं और आंखें बंद होती हैं, तो मैं आपको बता रही हूं कि आधा कम्युनिकेशन हमारा आईज के थ्रू होता है। कि अगर हमारी आंखें बंद हैं, तो जो हम सुन रहे हैं वो पूरा अंदर जा ही नहीं रहा है। इसीलिए मुरली सुन करके जब हम उनसे पूछते हैं क्या सुना, बहन जी याद नहीं। क्यों याद नहीं है? क्योंकि आंखें बंद हो रही है, भारी हो रही है। तो ये हम अच्छे स्टूडेंट बने, मुरली में से अच्छी पॉइंट्स निकाले, कुछ नई पॉइंट्स, हर मुरली में कोई ना कोई एक नई पॉइंट तो जरूर होती है और उस नई पॉइंट को हम जरूर नोट करें। मीठे बच्चे प्रश्न तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ ना कुछ नई पॉइंट, और बाबा ने जो कहा है उसको मुझे क्लास वर्क के साथ साथ होमवर्क भी करना है। नहीं तो हम एक नियम प्रमाण, मुरली सुन ली, हाँ सुन ली, और कभी कभी कोई दोबारा भी सेंटर पे आ जाते हैं तो हम कहते मुरली सुन, नहीं नहीं वो मैंने सुबह ही सुन ली थी, और पूछो सुना क्या, बहन जी याद तो कुछ भी नहीं है। फिर कभी कभी क्या कहते हैं, आप एक पॉइंट शुरू करो फिर मुझे शायद याद आ जाएगी। तो इसका मतलब हमें मुरली स्मृति में तो नहीं है ना, तो जो चीज स्मृति में नहीं है वो स्थिति में कैसे आएगी। सुनना, पढ़ना, अध्ययन करना और उसको स्मृति में रखना, तब हम उसके स्वरूप बन सकेंगे। फिर बाबा जैसे चाहते हैं कि बीच बीच में भी हम अटेंशन रखें, किस बात का, योग का। चाहे हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं या एक एक घंटे वाला करते हैं, चलो वो नहीं भी कभी हम इधर उधर होते हैं, घर परिवार में होते हैं, नहीं भी कर, लेकिन मेरा ये अटेंशन हो कि मुझे बीच बीच में अटेंशन से बाबा को याद कर लेना है, और याद ही नहीं करना है लेकिन उसका इतना अभ्यास करना है आत्मिक स्मृति का, जैसे ब्रह्मा बाबा ने कितना अभ्यास किया, कौन सा अभ्यास किया, आत्मा समझने का। घर के हरेक मेंबर के लिए बाबा ने नाम ले ले करके, ये आत्मा है, यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, नारायण आत्मा, एक एक का नाम ले ले करके, और एक बारी का तो बाबा का अनुभव, क्योंकि बाबा भी तो घर परिवार और परिवार समेत समर्पित हुए, तो जो बाबा की बहू थी राधिका, तो एक बारी कहते हैं कि वो पानी लेने के लिए गई बाबा के लिए, तो जब पानी लेने गई और लेकर के वापस आई, इतने में भी बाबा ने इतना अभ्यास किया, ये राधिका आत्मा है, ये राधिका आत्मा है, ये राधिका आत्मा है, ये राधिका आत्मा है, कितना अटेंशन, कि रहना भी उनके बीच में है लेकिन अटेंशन कितना। आज हम मुरली सुनते हैं, मुरली सुनकर के जब घर जाते हैं तो हम घर परिवार वालों के को कौन से दृष्टिकोण से देखते हैं, और कोई घर में आ जाए तो बोलने का लहजा हमारा कैसा होता है। ये मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है, बाबा ने जबकि कहा है ये वाइफ और हस्बैंड नहीं आना चाहिए मुख पे, क्या आना चाहिए, ये मेरे युगल हैं, कहा बाबा ने। पर बहुत सारे लोग बोलने का लहजा पता चलता है कि अभी कितना हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियस है, और घर परिवार में कोई बच्चा बड़ा ब्रिलियंट हो, कोई बच्चा बड़ी अच्छी पोस्ट पे सिलेक्ट हो गया हो, तो हम बड़े नशे से वो भी छलक रहा होता है, तो क्या हमारा इतना आत्म अभिमानी स्थिति पे अटेंशन है? क्योंकि हमें फास्ट पुरुषार्थ करना है तो सबसे पहला स्टेप ही हमारा यहां से स्टार्ट होता है कि हमें बार बार हम योग कितना बैठ के भी लगा लें, लेकिन आत्म अभिमानी बनने का अगर हमने अंदर ही अंदर पुरुषार्थ नहीं किया है, ऐसे अनुभव हो जैसे नारियल होता है ना सूखा हुआ, तो खोपरा और नारियल जैसे अलग खड़क रहा है, तो ऐसे अभी हमें अभ्यास करना है कि मैं आत्मा बीच में अलग हूं और ये ब्रेन ये बॉडी जैसे अलग हो रही है, डिटैच है। तो वो हमारे बोल में, चाल में, स्मृति में, संबंध में, संपर्क में, हर चीज में अनुभव होगा, हमें खुद को भी और दूसरों को भी अनुभव होगा, दूसरों को भी अनुभव होगा कि बहन जी भाई साहब आपके पास खड़े होते हैं ना, हमें बड़ी अच्छी फीलिंग आती है देही अभिमानी स्थिति की, शांति की या आत्मिक स्नेह की। तो वो हमारा जितना अंदर से पुरुषार्थ फास्ट होगा, इसके लिए अटेंशन होगा। और नुमा शाम का जो हमारा योग है, हम कहीं पे भी हों, कोशिश ये करें कि हम बैठ करके, और अगर कभी है आप नहीं भी उस समय, लेकिन एक समय अपना आधा घंटा, पौना घंटा या एक घंटा, अगर हमारा ये नुमा शाम का योग अटेंशन से है और पावरफुल है, तो भी हमारी स्थिति पे बहुत असर आता है, बहुत असर आता है। दूसरी बात, हम सबके बीच में रहते हैं, घर है, परिवार है, या जहां पर भी हैं, ऑफिस है, बिजनेस है, जहां पर भी हैं, तो वहां पर भिन्न भिन्न लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, और कभी कभी स्वभाव संस्कार का टकराव भी होता है, कोई बातें ऐसी आती हैं। लेकिन एक बात जो मैं अपने जीवन में धारण करती हूं कि मुझे जल्दी से जल्दी फुल स्टॉप लगाना है, ज्यादा क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, वैसे, इन सब बातों में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, जिसको बाबा कहता है कि जल्दी से जल्दी, हाँ, तीन बिंदियों की स्मृति कहता है ना, तो बाबा कहता है ड्रामा की फुल स्टॉप जल्दी लगनी चाहिए, और ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा में हर एक का पार्ट एक्यूरेट है या नहीं है, हाँ, एक्यूरेट है। और बाबा कहते हैं ड्रामा में हर एक निर्दोष है, आज हम कभी कहते हैं ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना, हमने कभी कुछ किया होगा उनके साथ इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। ड्रामा की एक्यूरेट नॉलेज को एक्यूरेट टाइम पे, एप्रोप्रिएट टाइम पे, एप्रोप्रिएट वर्ड्स के साथ अगर हम उसे यूज करते हैं, तो हमारी बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा समय, बहुत सारे संकल्प बचत में जाते हैं। और बचत करना बहुत जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले की ही मुरली में वरदान या पुरुषार्थ में था कि जैसे किसी का बड़ा परिवार होता है तो बड़े परिवार वाले व्यक्ति को, जिम्मेवार व्यक्ति को बचत करनी पड़ती है। जो जिम्मेवार व्यक्ति होता है वो क्या करता है, जिम्मेवारी भी निभानी है परंतु कुछ ना कुछ बचा के रखता है। और बचत करना बहुत जरूरी होता है। अगर बचाएंगे नहीं तो आई वेल पे, जैसे दुनिया में सोचते आई वेल पे कैसे क्या कर सकेंगे, तो बाबा कहते तुम्हारा कितना बड़ा परिवार है, विश्व एक परिवार है, हमारा परिवार है, और सारे परिवार को देने वाले कौन है, हम आत्माएं। तो मेरे पास बचत किया हुआ होगा, स्टॉक होगा, तभी तो मैं उन आत्माओं को दे सकूंगी। मैंने बचाया ही नहीं, समय को नहीं बचाया, संकल्पों को नहीं बचाया, एनर्जी को नहीं बचाया, तो हम कैसे दे सकेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कहां हम बचत कर सकते हैं।
Play.
बात चल रही थी कि हम अपने संकल्पों को कितना बचाएं, कम से कम संकल्पों में हम अच्छे से अच्छा कार्य करने का अभ्यास डालें। बचत जितनी हमारी होगी उतनी ही हम दूसरों को सुख शांति आनंद खुशी दे सकेंगे। अगर मेरे पास ही नहीं होगी शांति खुशी तो मैं दूसरों को कैसे दूंगी। और सब आत्माएं मेरे से आश लगा करके बैठी हैं, क्योंकि हम विशेष आत्माएं जो परमात्मा द्वारा चुनी हुई हैं, तो सब आत्माओं को देने के भी निमित्त हैं। तो इसीलिए हमारे से सबको एक्सपेक्टेशन है और मुझे बचत की स्कीम बनानी होगी। अगर मुझे फास्ट जाना है तो एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि हम अपने नियम और मर्यादाएं, एक है दिनचर्या में एक्यूरेसी हो, दूसरा है कि हम अपने आप फास्ट जाना चाहते हैं तो जो बाबा ने हमें नियम दिए हैं, कानून दिए हैं, मर्यादाएं दी हैं, हम उसमें कभी भी ढीलापन ना लाए। अब मान लो आप में से कितने लोग हैं जो रोज बाबा को भोग लगाते हैं। बहुतों के हाथ खड़े हो रहे हैं, बहुतों के नहीं हो रहे हैं। तो क्या ये हमारा नियम नहीं है? है या नहीं है? है? हम जाना तो चाहते हैं फास्ट, लेकिन नियमों को थोड़ा ढीला कर देते हैं। खान पान की शुद्धि का हमारा नियम है, है नियम, लेकिन आज हम बहुत सारी चीजों में लीनियंसी बरतते जा रहे हैं। फिर पूछते हैं कि हम ये खा सकते हैं, ये तो मशीन की बनी हुई है ना, ये तो इस चीज, लेकिन बाबा कहते हैं मशीन योग लगाती है क्या? मशीन योग लगाती है हा? तो हम ये भी एक सुस्ती कहें या आलस कहें कि हम थोड़ा सा, लेकिन इसका असर हमारे योग पर कितना पड़ता है। हम बनना चाहते हैं योगी, जाना चाहते हैं फास्ट, तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहते हैं, और भोजन के ऊपर अटेंशन नहीं। और सभी को मालूम है, सबको मालूम है ना हमारा ये नियम है, जहां तक हो सके खुद भोजन बना करके या कम से कम पवित्र आत्माओं के हाथ का बना हुआ तो हम भोजन करें। हम क्या करते हैं कि बहू बना देगी, अब बहू को तो ज्ञान नहीं है, और कभी कभी तो बहुएं स्नान भी नहीं करती हैं, और वो हमारा भोजन बैठ करके बनाए योगियों का, तो हमारा योग कैसा होगा, कैसा होगा हा? तो उसके लिए हम अपने घर परिवार में कुछ एडजस्टमेंट करें। कभी कभी कोई माताएं कहती हैं हमारे घर में तो रिवाज नहीं है, या बहू ही बनाती है, लेकिन थोड़ा सा रिवाज हम ब्राह्मण कल्चर का अपना ले। मैं आपको बताती हूं कि हमारी माता जी ज्ञान में चली शायद 1964 में, मामा के टाइम पे चली, और 55 साल वो इस ज्ञान में चली और उन्होंने बाद में शरीर छोड़ा। कितनी उम्र हो गई, 97। बाद में सेंटर पे भी रही, लेकिन कभी भी लौकिक में जाना हो तो कभी उन्होंने बहू के हाथ का खाना नहीं खाया। चाहे कितनी भी बुजुर्ग थी, कहती थी मुझे टेबल पे ही आटा ला दो, पानी ला दो, दे दो सब कुछ, यही चकला बेलन दे दो, मैं अपनी एक रोटी बेलूंगी और वो लेकर के प्लेट में रख करके मैं अपनी गैस पे सेक के आऊंगी। और जब तक वो घर में थी उन्होंने अपनी एडजस्टमेंट की हुई थी कि सब्जी मैं बनाऊंगी, दाल मैं बनाऊंगी, आटा मैं गूंदूंगी, मैं अपनी दो रोटी बना के बाबा को भोग लगा के फिर फुलके तुम बनाओ। दोनों कैसे एक दूसरे से सहयोग लेकर के दे करके, उनको भी सुख कि इन्होंने आधा खाना बना दिया, इनको सुख कि मैंने किसी और के हाथ का नहीं खाना, मैंने बाबा के नियम को फॉलो करना है। आज हम जाना चाहते हैं फास्ट और जरा भी हम त्याग और तपस्या नहीं करना चाहते, तो कैसे बाबा के दिल पर चढ़ेंगे, कैसे बाबा हमें अपने दिल पर रखेगा। और संगम युग एक ऐसा युग है जो आप बाप से कहो, जो मनवाना चाहो, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मुझे ये करना है तो करना है। क्योंकि एक बहुत बड़ा पिलर है ये हमारे योग का, कौन सा, अन्न की शुद्धि, बहुत बड़ा पिलर है। फिर हम कोई भी आता है ना तो हम क्या पूछते हैं, हमारा योग नहीं लगता, योग कैसे पावरफुल लगे हमें बताओ ना, हमारी क्लास कराओ ना। और ये हमें पता है कि पिलर कमजोर है, योग इसीलिए नहीं लगता, ज्ञान कमजोर है इसीलिए योग नहीं लगता है। मैं तो कहती हूं कि मुरली में भी सुबह की मुरली के साथ अपने आप से कम एक मुरली और पढ़ने या सुनने का जरूर शौक होना चाहिए। चाहे आप अव्यक्त मुरली पढ़ो, चाहे आप साकार मुरली पढ़ो, बार बार पढ़ो, तभी तो स्मृति में रहेगा। क्योंकि आज इतना विस्तार है दुनिया में कि आज दिमाग में एक बारी पढ़ने से कोई भी चीज फिट नहीं होती है, बार बार अध्ययन करना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है और अटेंशन रखना पड़ता है। मेरे अंदर आत्मा का भोजन कौन सा जा रहा है और साथ साथ शरीर को भी भोजन कौन सा जा रहा है। देखो ब्रह्मा बाबा ने कितना अटेंशन रखा, इसीलिए बाबा शिव बाबा कहते, देखो 93 की एज तक बाबा ने कोई सपोर्ट लेकर के नहीं बैठा। बाबा की बैठक देखिए, कहीं सपोर्ट है, कहीं सपोर्ट है, और कितनी एज थी, कैसे बाबा बैठते थे। आज हमको जरा सी चीज का कंफर्ट ना मिले हम हिलने लगते हैं। कैसे बाबा ने बैठ बैठ के तपस्या की। तो हम भी फास्ट जाना चाहते हैं तो अपने मन को कहो भाई तपस्या तो करनी पड़ेगी, मन से बात कर, मन तू मुझे मत हिला, तेरे को कहा है ना इतनी देर बैठना है तो बैठना है तुझे, थोड़ा तो हमें टाइट करना पड़ेगा अपने आप को। तो ये मर्यादाएं, जिसे हम बातचीत कैसे करनी है किसी, कितने प्यार से करनी, ये भी हमारी मर्यादा है ना। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। अभी भी हम यहां पर शांतिवन के परिसर में हैं और कभी कभी बहुत आवाज सुनाई देती है, लेकिन यहां ही हम थोड़ा सा ये अभ्यास करें। मैं आपको थोड़ा अनुभव सुनाती हूं। अभी पिछले साल मेडिकल विंग की यहां पर ही शांतिवन में कॉन्फ्रेंस थी और सब नए नए लोग आए थे, लेकिन हमारे बनारसी भाई साहब ने सबको इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप 3 दिन के लिए यहां पर हैं, आपको साइलेंस में रहना है। बातचीत नहीं करनी। सचमुच में उन नए नए लोगों ने इतना अच्छा इस बात को फॉलो किया कि मैं देख करके भी हैरान हो रही थी कि देखो कितने साइलेंस में चलते हैं, कपड़े रंगीन पहने हुए हैं और साइलेंस कितनी मेंटेन करके चल रहे हैं। ये बनारसी भाई ने इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि यहां 3 दिन तक आपको साइलेंस में ही रहना है। हम भी सभी बाबा के घर में आए हैं, पुरुषार्थ करने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करने आए हैं, हाथ खड़ा करो जरा, पुरुषार्थ करने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा। तो थोड़ा सा अटेंशन अभी ही हम रख ले में। किन किन बातों का? एक तो बोलना बहुत कम है, और बोलना भी है जरूरी तो थोड़ा सा फरिश्ते की तरह और थोड़ा मुस्कुरा करके, यहीं से अभ्यास करें। हम यहां पे अनुभव करने के लिए आए, क्योंकि घर में इतना अनुभव नहीं हो पाता। सेंटर पे भी हम 1 घंटे के लिए जाते हैं, लेकिन यहां पर हम 5 दिन, 7 दिन, जितने भी दिन के लिए हम आए हैं, तो ये हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। सेवा भी मिली है, भाग्य भी मिला है, और साथ साथ में पुरुषार्थ करने का मौका भी मिला है। तो इस पुरुषार्थ में हम इधर उधर ना बैठे ग्रुप बना बना के। लास्ट ईयर एक ग्रुप एवर हेल्दी हॉस्पिटल के साथ पार्क में बैठा था, माताएं थी। मैंने कहा कि माताओं यहां क्या कर रहे हो, इतनी सुंदर आशा दीदी की क्लास चल रही है और आप यहां क्या कर रहे हो। वो बोली कि वो ना, हम अपनी एक फ्रेंड की इंतजार कर रहे हैं, वो मार्केट गई है और वो मार्केट से आएगी ना, तब हम क्लास में एंटर करेंगे। किसका टाइम वेस्ट हो रहा है, किसका टाइम वेस्ट हो रहा है? हम आए हैं यहां पे पुरुषार्थ करने के लिए, और एक दूसरे के इंतजार में हम समय गंवा दें। और इतने में मैंने देखा कि क्लास पूरी हो गई और माताएं अब उठ रही हैं। कितनी पावरफुल यहां पर हमें क्लासेस मिलती हैं, बड़ी बड़ी दीदियों की, दादियों की। तो क्यों ना हम उस भाग्य को ले वे। मार्केट जाना ही है तो जिस समय क्लास ना हो उस समय जाएं, क्लास छोड़ करके और हम वहां पर घूमें, ये तो शोभा नहीं देता है। फिर हम कहते हैं हम फास्ट पुरुषार्थी बने, तीव्र पुरुषार्थी बने, हम बाबा के दिल पर चढ़े, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे? हमें एक एक चीज पे बहुत 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 अटेंशन देना पड़ेगा। बाबा कहते 1 मिनट भी मिलता है तो उसको भी गुल्लक में डाल लो। ये बहुत अभ्यास करना पड़ता है। हम खाने पे बैठे हैं, बातचीत नहीं करनी है। मुझे बाबा की याद में एक एक ग्रास अंदर लेकर के जाना, अटेंशन, बार बार अटेंशन। चाहे हम स्थूल कार्य कर रहे हैं, चाहे हम सूक्ष्म, लेकिन हमारा अटेंशन, जैसे वहां कहते हैं कि क्या, अटेंशन हटा दुर्घटना घटी, ऐसे ही है ना। तो इसीलिए कदम कदम पे हमको टेंशन रखना है, फास्ट जाना है तो स्पीड ब्रेकर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर एक भी स्पीड, इसलिए हाईवे पे स्पीड ब्रेकर्स नहीं होते फास्ट, अगर एक भी स्पीड ब्रेकर आता है तो हमारी स्पीड को एकदम कम करता है और दोबारा स्पीड उठाने में टाइम लगता है। अगर एक बारी भी मन मुटाव होता है, मूड ऑफ होता है, योग टूटता है दोबारा, तो फिर वो टाइम ले लेता है। तो इसीलिए अपने विचारों को बहुत अटेंशन दे। अगर कोई बात जीवन में आ भी जाती है, कोई परिस्थिति आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसमें भी हम स्पिरिचुअल टूल्स यूज करें। हम कभी कभी किनसे राय लेने जाते हैं, राय लौकिक वालों की लेते हैं, जो ज्ञान में नहीं है। अब जो व्यक्ति ज्ञान में नहीं है, हम उनसे अगर राय लेते हैं तो हमें वो कैसी राय देंगे, वो विकारों युक्त वाली राय देंगे, वो ममता वाली देंगे, लोभ वाली देंगे, कुछ ना कुछ ऐसी राय। अगर हम कमजोर ब्राह्मण की भी राय लेते हैं तो भी हमारी उन्नति कैसी होगी। इसीलिए अगर राय लेनी है तो पावरफुल भी के शक्तिशाली हो। और जो मेरे अनुभव में एक दो बातें आई हैं वो ये है कि ब्राह्मण जीवन में कभी भी नाम मान शान के पीछे ना हम दौड़े। क्योंकि ज्ञान और योग की अगर हमारे अंदर गहराई नहीं है तो हम कभी कभी चल तो बहुत फास्ट गति से पढ़ते हैं, लेकिन जरा सी भी परिस्थिति आई, जरा सा भी ब्राह्मण जीवन में उतार चढ़ाव आया तो फिर वो डाउन भी बहुत जल्दी हो जाती। तो इसीलिए साइड सीन है, आएंगे। और ये नहीं कि हमने बड़े बड़ों के साथ खाना खा लिया या बड़ों के साथ ये कर लिया, नहीं। मुझे ज्ञान और योग की फाउंडेशन को बहुत बहुत मजबूत करना है। दो दिन पहले ही बाबा ने कहा, रेत के ऊपर मिक्सर कर देते हैं, मिक्सचर कर देते हैं ना, तो फिर क्या होता है, फाउंडेशन में अगर मिक्सचर हो तो बिल्डिंग कैसी खड़ी होगी। तो हमने तो 84 जन्मों की बिल्डिंग अपनी खड़ी करनी है और फाउंडेशन में ही हमारी मिक्सचरिटी, इतना तो होता ही है, इतना तो चलता ही है, इतना तो ये भी तो ऐसा करते हैं, ये भी तो ऐसे करते हैं। मुझे अपनी फाउंडेशन को कूट कूट के मजबूत करना है। संगम युग पर ही मुझे फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग बना लेनी है, जो मेरे 84 जन्म की बिल्डिंग बहुत अच्छी, इसके साथ साथ एक और फास्ट जाने के लिए तन मन धन को बाबा की सेवा अर्थ श्रीमत प्रमाण लगाना है। जाना चाहते हैं फास्ट और तन कहां लग रहा है सारा दिन, मन कहां लग रहा है और धन का मैक्सिमम हिस्सा कहां लग रहा है। मुझे तो वंडर लगता है कि बाबा ने देखो एक एक पाई बाबा के यज्ञ में लगाई और इतना करने के बाद भी बेगरी पार्ट आया तो भी कितना बाबा ने निश्चय बुद्धि हो करके मुस्कुराते हुए वो पार्ट प्ले किया। आज हम कुछ देवे यज्ञ में और थोड़ा सा हमें पूछा ना जाए तो क्या कहते हैं, हमने इतना दिया इतना किया, हमें कोई पूछता ही नहीं, हमें कोई ये भी हमारे फास्ट टैग को कमजोर करता है, फास्ट से नहीं जाने। इसीलिए जो भी करें जितना भी करें अपनी स्वइच्छा से मैक्सिमम करेंगे तो हमारा ट्रैक फास्ट जाएगा। ये भी एक गुप्त रहस्य है कितना हमने बाबा से संबंध जोड़ा है, कितना हमने बाबा से स्नेह जोड़ा है। स्नेह जो है ऑटोमेटिकली सब कुछ खींच के ले जाता है, तो बाबा से मेरा प्यार कितना है। तो जितना मेरा बाबा से प्यार, और प्यार का नाम ही योग है, प्यार में गीत गाते रहो, प्यार में नाचते रहो, टांगों से नाचने की बात नहीं है, प्यार से। एक मुरली में बाबा ने कहा है गाना और नाचना ही योग है। मन हमारा गीत गाता रहे, मुस्कुराता रहे चेहरा, और ऐसे लगे जैसे हम क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। इतनी खुशी, अंदर की खुशी। ऐसी हो कि हमको देख करके दूसरे मुस्कुरा पड़े। करेंगे ऐसा, करेंगे ऐसा, या हमारा ही मूड ऑफ है, 10 लोग आके पूछ रहे क्या बात है आज, कुछ बात हो गई क्या, किससे हो गई। सदा राजी खुशी, हर हाल में राजी, हर बात में राजी। राजी रहेंगे तब तो खुश रहेंगे। जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला, वाह बाबा वाह। कौन सा गीत गाना है, और कौन सा गीत गाना है, बोलो बोलो, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरे संबंधी वाह, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार वाह। किसी ने दुख कष्ट भी दिया है ना, उसकी भी वाह वाह करो, वाह तेरे कारण तो हम बाबा के और करीब आए हैं। करेंगे उनका भी दिल्ली से शुक्रिया, मन ही मन शुक्रिया करो, अरे तुम्हारी खातिर तो हम बाबा के और समीप आए हैं। ऐसा नहीं मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया ये, अरे बहुत अच्छा किया। बलिहारी दुनिया की ठोकरों की, जिसने ठाकुर की गोदी में बिठाया। बलिहारी दुनिया के दुखों की, जिसने सुखदाता का बना दिया। वाह बाबा वाह। रोज रात को वाह वाह करते हुए वाह वाह की गोद में सोए, ठीक है। तो अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है, तो समय पर हमें एक्यूरेट पॉइंट याद आ जाए, ये तीव्र पुरुषार्थ की निशानी। एक्यूरेट समय पर हम फुल स्टॉप लगा दें, तनाव टकराव में नहीं आना है हमें, लगाव झुकाव तो नहीं लेकिन टकराव में नहीं आना है, क्योंकि टकराव बहुत तंग करता है। तो इसीलिए सदा वाह वाह के गीत गाते, संगम युग की मौज मनाते, बाबा से दिल जान से प्यार करते, बाबा की गोदी में बैठो, बाबा के साथ पांडव भवन में झूला है ना, तो मन ही मन में झूल के आया करो, बाबा साथ बैठा है, मैं साथ बैठी हूँ, मैं साथ बैठा हूँ, बाबा के साथ बैठ करके मैं झूल रहा हूँ, क्या आनंद आएगा। तो अच्छी अच्छी स्मृतियां, अच्छी अच्छी बातें याद रखेंगे, स्मृति में रखेंगे, तो स्वरूप बनते जाएंगे, तो ज्ञान भी आपके स्वरूप से छलकेगा, शांति भी, प्रेम भी, जो हम पहला लेसन लेते हैं ना, बाबा ज्ञान का सागर है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, बाबा प्रेम का सागर है, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, बाबा सुख का सागर है, मैं सुख स्वरूप, तो वो स्वरूप हमारा छलकेगा। ठीक है, तो आप सभी आज के बसंत पंचमी के दिन संकल्प लें कि इन सब बातों को हम जीवन में आत्मसात करेंगे, धारण करेंगे, और सरस्वती माँ के बच्चे हम सब मास्टर सरस्वती बनेंगे। ओम शांति।